एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दिल को छूती है और बहुत सोचने पर मजबूर भी करती है।
नमस्ते।
ये कहानी है विश्वासों के टकराव की, मेडिकल साइंस की अपनी कुछ सीमाओं की, और हाँ, सबसे बढ़कर इंसानी रिश्तों और आपसी समझ की।
बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं एन फिडेमैन की बहुत ही मार्मिक और जानी मानी किताब द स्पिरिट कैचेज यू एंड यू फॉल डाउन की।
हाँ,
ये लियाली नाम की एक मोंग बच्ची की सच्ची कहानी है।
बहुत दुखद।
उसे एक गंभीर मिर्गी थी।
और कहानी इस बारे में है कि कैसे अमेरिका की जो पश्चिमी चिकित्सा पद्धति है,
हाँ, वेस्टर्न मेडिसिन,
और उसके परिवार की जो सदियों पुरानी मोंग मान्यताएं थीं, उनके बीच समझ की कमी ने मतलब एक बड़ी त्राजी को जन्म दिया।
सही कहा। और ये मुद्दा आज मुझे लगता है पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है ना।
भारत जैसे देश में इतनी विविधता है। यहाँ हम रोज ही तो अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं, विश्वासों वाले लोगों से मिलते हैं।
बिल्कुल, हेल्थ केयर में तो खास तौर पर।
हाँ, हेल्थ केयर से लेकर रोज की बातचीत तक एक दूसरे को सही मायने में समझना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल भी। ये किताब इसी बड़े सवाल को उठाती है बहुत गहराई से।
और देखिए, इस मुश्किल कहानी को जिस संवेदनशीलता से एन फेडेमैन ने लिखा है वो कमाल है। फेडेमैन एक जानी मानी अमेरिकी पत्रकार हैं, निबंधकार हैं। उनकी खासियत ये नहीं कि वो सिर्फ रिपोर्टिंग करती हैं, वो करती हैं जिसे साहित्यिक पत्रकारिता कहते हैं, लिटरेरी जर्नलिज्म।
हाँ, मतलब वो सिर्फ तथ्य नहीं बताती, वो कहानी बुनती हैं, किरदारों के अंदर उतर कर देखती हैं, उनके नजरिए, उनके डर, उनके प्यार, सब कुछ समझने की कोशिश करती हैं।
और इस किताब के लिए तो उन्होंने करीब 8 साल लगाए।
8 साल बहुत लंबा समय है।
बिल्कुल, कैलिफोर्निया में रही, मोंग समुदाय के साथ, लियान के परिवार से मिली, डॉक्टरों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सबसे घंटों बातें की।
और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो किसी का पक्ष लेती हुई नहीं लगती, जज नहीं बनती,
सही।
वो फैसला नहीं सुनाती, बल्कि एक पुल बनाने की कोशिश करती हैं। एक तरह से वो हमें दिखाती हैं कि कैसे दोनों तरफ के लोग, डॉक्टर भी परिवार भी, अपनी अपनी जगह नेक इरादे रखते थे,
हाँ, इरादे तो नेक थे,
पर वो एक दूसरे की दुनिया को मतलब समझ ही नहीं पाए।
वो एक तरह से कल्चरल ट्रांसलेटर बन जाती हैं, सांस्कृतिक अनुवादक, हमें दोनों नजरिए समझने में मदद करती हैं।
तो ये किताब आखिर है किस बारे में, अगर आसान शब्दों में कहें तो?
ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराने की कहानी है। एक तरफ है पश्चिमी बायोमेडिसिन,
जो शरीर को एक मशीन की तरह देखती है और बीमारियों का इलाज मतलब साइंटिफिक तरीके से करना चाहती है।
बिल्कुल, टेस्ट करो, दवा दो, ठीक करो।
हाँ, और दूसरी तरफ है मोंग समुदाय की पारंपरिक सोच, आध्यात्मिक सोच, जहाँ बीमारी का रिश्ता आत्मा से है, रीति रिवाजों से है, समुदाय के इतिहास से जुड़ा है।
बिल्कुल सही। और किताब का नाम ही ये फर्क दिखाता है, द स्पिरिट कैचेज यू एंड यू फॉल डाउन।
हाँ, ये मोंग भाषा में मिर्गी के लिए जो शब्द है क्वैग डैप पेग, उसका मतलब है।
तो जहां अमेरिकी डॉक्टर लिया की हालत को मिर्गी एपिलेप्सी मतलब दिमाग की एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी मान रहे थे,
हाँ,
जिसका इलाज दवाओं से होना था,
वहीं लिया के माँ बाप नाउ काउ और फुआ ली इसे क्वैग डैप पेग मानते थे, मतलब कोई आत्मा लिया को पकड़ लेती है और वो गिर जाती है।
उनके लिए ये सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक संकेत भी हो सकता था। क्या पता लिया बड़ी होके शिवनेब बनती।
हाँ, यानी एक शमन जो आत्माओं से बात करके इलाज करे, ये सोच डॉक्टरों की सोच से कितनी कितनी अलग थी।
जमीन आसमान का फर्क, और इसी बुनियादी फर्क की वजह से सब कुछ उलझता चला गया। किताब सिर्फ लिया के मेडिकल केस के उतार चढ़ाव नहीं दिखाती,
नहीं, वो हमें मोंग लोगों के इतिहास में भी ले जाती है, उनकी संस्कृति में।
बिल्कुल, उनका चीन से लाओस आना, फिर वियतनाम युद्ध में अमेरिका के लिए लड़ना, और फिर कैसे वो शरणार्थी बनकर अमेरिका पहुंचे, ये सब समझे बिना हम ली परिवार के डर को, उनके अविश्वास को समझ नहीं सकते।
चलिए कहानी के कुछ मुख्य मोड़ों पर थोड़ी बात करते हैं, हालांकि पूरी गहराई तो किताब पढ़ के ही महसूस होगी।
हाँ बिल्कुल।
कहानी शुरू होती है 1982 में कैलिफोर्निया का मर्सेड शहर। लिया ली का जन्म होता है और सिर्फ 3 महीने की उम्र में उसे पहला भयानक दौरा पड़ता है, और इमरजेंसी रूम में पहुंचते ही पहली दीवार खड़ी हो जाती है भाषा की। डॉक्टर अंग्रेजी बोल रहे हैं, परिवार मोंग,
और वो समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को।
बिल्कुल। डॉक्टर मिर्गी का निदान करते हैं, एपिलेप्सी और ढेर सारी दवाइयां लिख देते हैं जिनका शेड्यूल इतना मुश्किल होता है कि
समझना ही मुश्किल है। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। परिवार दवाइयों के नाम नहीं पढ़ सकता, डोज नहीं समझ पाता,
और उन्हें दवाओं के साइड इफेक्ट से भी डर लगता है।
हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो बीमारी को डॉक्टरों की तरह देख ही नहीं रहे। उनके लिए तो ये आत्मा का मामला है।
तो डॉक्टरों को लगता है कि परिवार जानबूझकर लापरवाही कर रहा है, नॉन कम्प्लायंट है।
हाँ, ये शब्द बहुत इस्तेमाल हुआ, नॉन कम्प्लायंस। नील अर्नस्ट और पैगी फिलिप जैसे डॉक्टर थे, वो लिया को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो परिवार के इस असहयोग से बहुत निराश थे।
यहाँ ये कम्प्लायंस शब्द बहुत सोचने वाला है। डॉक्टर चाहते थे कि परिवार बस उनकी बात माने, आंख बंद करके।
हाँ, जैसा डॉक्टर कहें वैसा करो।
लेकिन परिवार अपनी समझ, अपने डर के हिसाब से चल रहा था। फेडमैन बाद में लिखती भी हैं कि जरूरत कम्प्लायंस की नहीं थी, कॉन्कॉर्डेंस की थी।
कॉन्कॉर्डेंस मतलब आपसी सहमति।
हाँ,
मतलब डॉक्टर और मरीज या उसका परिवार मिलकर बातचीत करके इलाज का कोई ऐसा रास्ता चुनें जिस पर दोनों राजी हों, जिसे वो निभा सकें।
सोचिए, अगर ये हो पाता शायद कहानी बिल्कुल अलग होती।
शायद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिया की हालत बिगड़ती गई, दौरे बढ़ते गए।
डॉक्टरों को लगा कि अब तो लिया की जान खतरे में है, और उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठोर फैसला लिया।
उन्होंने बाल सुरक्षा सेवाओं, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को खबर कर दी,
और लिया को उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया। उसे एक अमेरिकी पालक परिवार, फॉस्टर केयर में भेज दिया गया।
आप सोच सकते हैं ली परिवार पर क्या गुजरी होगी। उनके लिए तो ये किसी सजा से कम नहीं था, अपनी बच्ची छीन ली गई।
और इसी दौरान शायद अलगाव के तनाव की वजह से या देखभाल में बदलाव के कारण लिया को वो दौरा पड़ा जिसे डॉक्टर बाद में द बिग वन कहते हैं।
हाँ, ये इतना लंबा, इतना भयानक दौरा था कि उसके दिमाग को मतलब परमानेंट गंभीर नुकसान पहुंचा। वो एक तरह से कोमा जैसी स्थिति में चली गई।
वो जानना भी बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, कैसे उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान CIA का साथ दिया था, अमेरिका के सहयोगी थे वो।
हाँ, सीक्रेट वॉर में।
और फिर कैसे युद्ध के बाद अमेरिका उन्हें एक तरह से छोड़कर चला गया। लाओस में उन पर बहुत अत्याचार हुए, हजारों लोग मारे गए।
और बाकी अपनी जान बचाकर, भयानक मुश्किलों से गुजरकर, मेकांग नदी पार करके थाईलैंड के शरणार्थी कैंपों में पहुंचे।
ये जो पूरा इतिहास है ना, ये अमेरिकी व्यवस्था के प्रति, अधिकारियों के प्रति उनके गहरे अविश्वास को समझाता है। वो यूं ही शक नहीं करते थे।
सही बात है।
तो जब लिया घर वापस आई द बिग वन के बाद, वो पहले जैसी नहीं थी। वो देख नहीं सकती थी, हिल डुल नहीं सकती थी,
और डॉक्टरों और परिवार के बीच का जो रिश्ता था वो लगभग टूट चुका था।
हाँ, भरोसा खत्म हो गया था। परिवार ने डॉक्टरों को बताए बिना कई दवाएं देना बंद कर दिया। उन्हें लगने लगा था कि ये दवाएं ही लिया को और बीमार कर रही हैं।
और वो अब पूरी तरह से अपनी पारंपरिक जड़ी बूटियों पर, शमन की जो रस्में होती हैं, उन पर भरोसा करने लगे।
यहाँ फेडमन एक बहुत जरूरी सवाल उठाती हैं। क्या डॉक्टर लिया के शरीर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे,
और माँ बाप उसकी आत्मा को?
हाँ, और क्या ये दोनों लड़ाइयाँ एक साथ नहीं लड़ी जा सकती थी?
यहीं पर किताब हमें आर्थर क्लेनमन का जिक्र करती है, जो एक मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और उनके 8 सवाल।
हाँ, वो 8 सवाल जो अगर डॉक्टर ली परिवार से पूछते तो शायद उनके नजरिए को, उनकी दुनिया को थोड़ा बेहतर समझ पाते।
जैसे कि सवाल थे,
हाँ,
आप इस बीमारी को क्या कहते हैं, या आपको क्यों लगता है कि ये हुई है, आप इसके इलाज से क्या उम्मीद रखते हैं।
बहुत सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल, पर ये सवाल कभी पूछे ही नहीं गए।
नहीं पूछे गए। दोनों पक्ष अपनी अपनी सच्चाई में इतने डूबे थे, इतने यकीन से भरे थे कि दूसरे की सच्चाई को देख ही नहीं पाए, या शायद देखना ही नहीं चाहा।
एक तरह का सेक्रेट बबून सिंड्रोम, जैसा फेडमैन कहती हैं। कुछ मान्यताएं इतनी गहरी होती हैं कि उन पर सवाल उठाना नामुमकिन लगता है।
किताब के आखिर में लिया घर पर है, वो मेडिकल लड़ाई, वो खींचतान, वो सब खत्म हो चुका है।
हाँ,
लेकिन अब हम देखते हैं उसके माँ बाप का अटूट प्यार, उनकी देखभाल। वो उसे रोज नहलाते हैं, सुंदर पारंपरिक मूंग कपड़े पहनाते हैं, उससे लगातार बातें करते रहते हैं, जैसे वो सब सुन रही हो, समझ रही हो।
और फेडमैन इस देखभाल की तुलना अस्पताल के अक्सर ठंडे मशीनी माहौल से करती हैं।
और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है?
क्या?
डॉक्टरों ने कहा था कि द बिग वन के बाद लिया शायद कुछ महीने ही जी पाएगी, लेकिन अपने परिवार के इस प्यार और देखभाल के बीच वो 26 साल और जीवित रही।
26 साल, ये तो वाकई कमाल है। 2012 में उसकी मृत्यु हुई।
हाँ, ये तथ्य हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि देखभाल, प्यार और पारंपरिक तरीकों की अपनी क्या ताकत हो सकती है, जिसे शायद मेडिकल साइंस पूरी तरह नापता नहीं या समझता नहीं।
इस कहानी से वाकई कई गहरे सबक मिलते हैं। पहला और सबसे साफ तो यही है, संस्कृतियों का टकराव कितना विनाशकारी हो सकता है।
हाँ।
पश्चिमी मेडिसिन और मॉन्ग आध्यात्मिक सोच, दोनों के पास अपनी अपनी समझ थी, अपनी अपनी ताकत थी, लेकिन वो एक दूसरे से बात करने का, समझने का पुल नहीं बना पाए।
और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, भारत में भी हम ये रोज देखते हैं। कितने अलग अलग समुदाय हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेकर, जीवन को लेकर कितनी अलग मान्यताएं हैं जो शायद मुख्य धारा से मेल नहीं खाती,
और अक्सर उन्हें सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया जाता है।
हाँ, समझना ज्यादा मुश्किल है। दूसरा सबक है नेक इरादों की त्रासदी।
उफ, ये बात बहुत असर करती है,
है ना? ये कहानी हमें झकझोर कर बताती है कि सिर्फ अच्छे इरादे रखना काफी नहीं है, समझ के बिना वो नेक इरादे भी विनाशकारी हो सकते हैं।
बिल्कुल। लिया के डॉक्टर उसकी जान बचाना चाहते थे, माँ बाप उसकी आत्मा को, दोनों के इरादे नेक थे, इसमें कोई शक नहीं, पर नतीजा कितना भयानक हुआ।
कितना भी अच्छा चाहें किसी के लिए, अगर हम उससे या उसकी स्थिति को सच में समझ नहीं पा रहे तो अनजाने में कितना नुकसान कर सकते हैं।
और ये सिर्फ डॉक्टरों पे लागू नहीं होता, हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में भी तो ऐसा हो सकता है।
बिल्कुल। तीसरा सबक जो आज के समय में बहुत बहुत जरूरी है, सांस्कृतिक विनम्रता का महत्व, कल्चरल ह्यूमिलिटी।
विनम्रता,
ये सिर्फ किसी दूसरी संस्कृति के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेना नहीं है, जिसे कल्चरल कॉम्पिटेंस कहते हैं।
नहीं,
विनम्रता का मतलब है ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते, कि हमारी अपनी सोच भी सीमित हो सकती है, पक्षपातपूर्ण हो सकती है।
और इसका मतलब है दूसरे की बात ध्यान से सुनना, सच में सुनना, खासकर तब जब वो हमसे बिल्कुल अलग सोच रहा हो। ये डॉक्टरों, टीचरों, अफसरों, मतलब हर किसी के लिए जरूरी है।
चौथा है कहानी का महत्व, पावर ऑफ नैरेटिव।
हाँ, डॉक्टरों ने लिया के मेडिकल चार्ट्स देखे, टेस्ट रिपोर्ट्स देखी,
लेकिन उसके परिवार की कहानी सुनने का वक्त नहीं निकाला या जरूरी नहीं समझा। उनका इतिहास, उनके डर, उनके विश्वास, वो सब अनसुना रह गया।
हर इंसान की, हर परिवार की एक कहानी होती है, उस कहानी को समझे बिना हम उन्हें या उनकी जरूरतों को कैसे समझ सकते हैं, है ना?
हाँ, आज भी अस्पतालों में अक्सर मरीज सिर्फ एक केस नंबर या बेड नंबर बनकर रह जाता है, उसकी कहानी कहीं खो जाती है।
और आखिरी सबक है इतिहास और पुराने जख्मों का असर। ली परिवार का अमेरिकी व्यवस्था पर जो अविश्वास था वो बेवजह नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पीछे पीढ़ियों का संघर्ष था, धोखा था, विस्थापन का दर्द था।
जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय के व्यवहार को देखते हैं तो अक्सर उनके इतिहास के बोझ को नजरअंदाज कर देते हैं। ये समझना जरूरी है कि अतीत हमारे आज को कैसे शक्ल देता है।
किताब में कई ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे कि वो शीर्षक ही है, द स्पिरिट कैचेज यू एंड यू फॉल डाउन।
हाँ, एक ही चीज मिर्गी का दौरा, उसको दो संस्कृतियां कितने अलग ढंग से देख रही हैं, समझ रही हैं। एक के लिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दूसरे के लिए आत्मा का शरीर पर कब्जा कर लेना।
लेखिका एन फेडेमैन का ये कहना भी बहुत पावरफुल है, जिसका सार कुछ यूं है, मुझे यकीन हो गया है कि लिया की जिंदगी किसी इन्फेक्शन या परिवार के असहयोग से बर्बाद नहीं हुई, बल्कि दो संस्कृतियों के बीच की आपसी नासमझी, क्रॉस कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग से हुई।
ये बहुत बड़ी बात है, ये सीधा दोष किसी व्यक्ति पर नहीं डालता, बल्कि व्यवस्था की कमी, संवाद की कमी को जिम्मेदार ठहराता है।
मॉन्ग नजरिए को समझने के लिए ये विचार भी अहम है। मॉन्ग लोग शरीर और आत्मा को एक मानते हैं। जब आत्मा डर कर शरीर से निकल जाती है तो शरीर बीमार हो जाता है, और शरीर को ठीक करने का तरीका है आत्मा को वापस बुलाना।
इससे समझ आता है कि उनके लिए वो शमन वाली रस्में क्यों इतनी जरूरी थीं, और क्यों कुछ दवाएं उन्हें आत्मा के लिए खतरा लगती थीं। वो दवाओं को बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि आत्मा को भगाने वाला मानते होंगे शायद।
शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली बात डॉक्टर नील अर्नस्ट का वो बाद का कबूलनामा है, जिसका सार है, काश मैं एक बेहतर कल्चरल ब्रोकर यानी सांस्कृतिक मध्यस्थ बन पाता, काश मैं मॉन्ग लोगों के बारे में और जानता, मुझे लगता है मैं नाकाम रहा, हम सब नाकाम रहे।
एक डॉक्टर का ये कहना, ये बहुत बड़ी बात है।
हाँ।
ये दिखाता है कि समय के साथ सोच बदली है और अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की हिम्मत आई है।
और देखिए, इस किताब के जो सबक है वो सिर्फ मेडिकल फील्ड तक ही सीमित नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
हाँ, डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ केयर से जुड़े लोगों के लिए तो ये बहुत जरूरी गाइड है एक तरह से, कि मरीज की संस्कृति का सम्मान करें, जरूरत पड़े तो दुभाषियों की मदद लें, इलाज में मरीज या परिवार की सहमति, वो जो कॉन्कॉर्डेंस की बात हुई, वो हासिल करें।
लेकिन ये बातें हर उस इंसान के लिए काम की हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम करता है, चाहे वो टीचर हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, या किसी कंपनी में काम करते हों। बिल्कुल, किसी के व्यवहार को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को, उसके इतिहास को जानना, उससे सीधे बात करके उसकी बात सुनना, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी मुश्किलों को सिस्टम तक पहुंचाने में मदद करना, यानी वो कल्चरल ब्रोकर बनना, ये सब बहुत ज़रूरी स्किल्स हैं आज के समय में।
और अपनी निजी ज़िंदगी में भी तो लागू होती हैं ये बातें।
कैसे?
ये किताब हमें सिखाती है कि हम दूसरों के प्रति ज़्यादा हमदर्दी कैसे रख सकते हैं, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना और किसी ऐसे व्यक्ति की बात ध्यान से बिना जज किए सुनना जिसका नज़रिया हमें बिल्कुल अजीब या गलत लग रहा हो। अक्सर जिसे हम गलत कहते हैं वो बस हमारी समझ से परे होता है।
कोशिश तो कर ही सकते हैं समझने की।
सही कहा।
मेरे लिए इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये कि चाहे मेडिकल साइंस हो या जिंदगी का कोई और पहलू, समझ, खासकर सांस्कृतिक समझ, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है बस।
ये बुनियादी जरूरत है, और जैसा लिया के केस में हुआ, ये सचमुच जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकती है। सिर्फ जानकारी या सिर्फ भावनाएं काफी नहीं होती, ज्ञान और संवेदना, दिमाग और दिल दोनों को साथ मिलकर चलना होगा, वरना एक दूसरे को न सुन पाने की कीमत बहुत भारी हो सकती है।
और मेरे लिए ये कहानी एक और बड़ा सवाल उठाती है कि हम जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे परिभाषित करते हैं।
हाँ, ये भी एक अहम सवाल है।
क्या ये सिर्फ शारीरिक क्षमताओं तक सीमित है? मतलब लिया का जीवन मेडिकल नजरिए से देखे तो शायद बहुत सीमित था। वो देख नहीं सकती थी, हिलडुल नहीं सकती थी,
लेकिन उसके परिवार ने जिस अटूट प्यार और देखभाल से उसे पाला, उसने उसके जीवन को एक अलग तरह की गरिमा दी, एक अलग मायने दिए।
और उसका 26 साल और जीना डॉक्टरों की भविष्यवाणी के बिल्कुल उलट, शायद ये इसी बात का सबूत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्यार, देखभाल, अपनेपन का इंसानी जीवन में क्या मोल है, जिसे शायद हम अपनी इस आधुनिक भागदौड़ में कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।